नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। क्वालालंपुर स्थित कैपिटल ए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी टोनी फर्नांडिस ने सोमवार को कहा कि कंपनी भारतीय बाजार को लेकर बहुत उत्साहित है। कैपिटल ए के पास एयरलाइन एयर एशिया का स्वामित्व है। कैपिटल ए ने पिछले साल अपनी भारतीय एयरलाइन अनुषंगी कंपनी टाटा समूह को बेच दी थी। टोनी फर्नांडिस ने कहा, हम टाटा समूह के साथ काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उसके साथ मिलकर काफ़ी कुछ करेंगे। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, हम बस उड़ान संचालित कर रहे हैं और पर्यटकों को देश में ला रहे हैं, भारतीय पर्यटकों को अन्य गंतव्यों तक ले जा रहे हैं। भारत में एयर एशिया करीब 15 स्थानों से विमान सेवाएं संचालित करती है। हाल ही में उसने अमृतसर और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बीच विमान सेवा शुरू की थी। उन्होंने कहा, हम भारत में और अधिक पहुँच स्थापित करते रहेंगे। स्थानीय शेयर बाजारों में लगातार सातवें दिन सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 293.7 अंक चढ़कर 66,892.61 पर पहुंच गया। एनएससी निफ्टी 95 अंक बढ़कर 19,914.95 पर रहा। सेंसेक्स में एचसीएल टेक्नोलॉजीज, मारुति, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, विप्रो, नेस्ले, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर लाभ में रहे। वहीं इंडसइंड बैंक और भारतीय एयरटेल के शेयर नुकसान में रहे। अन्य एशियाई बाजारों में शंघाई कंपोजिट फायदे में रहा और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई कंपोजिट नुकसान में रहे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.18% की गिरावट के साथ 90.49 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 224.22 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे। घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुख के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की बढ़त के साथ 82.93 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा के विशेषज्ञों ने बताया कि हालांकि विदेशी कोष के प्रवाह और कच्चे तेल की कीमत के 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक रहने का असर भी घरेलू मुद्रा पर दिखा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.93 पर खुला, जो पिछले बंद स्तर की तुलना में 9 पैसे की बढ़त है। इसके बाद वो 82.90 से 82.96 प्रति डॉलर के बीच कारोबार कर रहा था। शुक्रवार को रुपया 83.02 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इसी बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.35% की गिरावट के साथ 104.72 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.24% की गिरावट के साथ 90.43 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय कानून कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLT ने विप्रो लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने के लिए एक परिचालन ऋणदाता की याचिका को खारिज कर दिया है। अपीलनीय न्यायाधिकरण की 2 सदस्यीय चेन्नई पीठ ने पहले कहा था कि विप्रो और याचिकाकर्ता के बीच भुगतान को लेकर पहले से ही विवाद था। उन्होंने पाया कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC लेनदारों के लिए महज वसूली कानून होने के लिए नहीं बनाई गई है। NCLT ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT के आदेश को बरकरार रखा है। NCLT की बेंगलुरु पीठ ने 16 जनवरी 2020 को परिचालन ऋणदाता ट्राइको लाइट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज की याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश को दिल्ली स्थित परिचालन ऋणदाता LTHT इलेक्ट्रिक पैनल्स के निर्माता ने अपीलीय निकाय NCLT के समक्ष चुनौती दी थी। हालांकि NCLT ने ये देखकर इसे खारिज कर दिया। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रतिवादी कंपनी यानी विप्रो द्वारा कुल चालान राशि का 3% रोकना वास्तव में एक विवाद था। IBC के तहत किसी भी कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया आमतौर पर केवल स्पष्ट मामलों में शुरू की जाती है, जहां पार्टियों के बीच बकाया कर्ज को लेकर कोई वास्तविक विवाद नहीं होता है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने रविवार को कहा कि वैश्विक पुनरुद्धार धीमा और असमान है। उन्होंने वित्तीय स्थिरता और विकासोन्मुख संरचनात्मक सुधार के लिए मजबूत नीतियों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। जॉर्जिवा ने यहां G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में कहा कि G20 सदस्यों को बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करके जलवायु वित्त के लिए प्रतिवर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर का समर्थन देने के वादे को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जलवायु कार्रवाई के लिए अपने लचीलेपन और स्थिरता ट्रस्ट के माध्यम से कमजोर देशों का समर्थन करने के लिए 40 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि देशों को कर सुधारों, प्रभावी सार्वजनिक खर्च, मजबूत वित्तीय संस्थानों और मजबूत स्थानीय ऋण बाजारों के जरिए हरित संक्रमण के वित्त पोषण और प्रबंधन के लिए घरेलू संसाधन जुटाने की भी जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि कोविड महामारी से वैश्विक पुनरुद्धार अभी धीमा और असमान है, इसलिए सभी देशों को आर्थिक और वित्तीय स्थिरता और विकास उन्मुख संरचनात्मक सुधारों का समर्थन करने के लिए ठोस नीतियां अपनानी चाहिए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।